पृष्ठ संख्या 131। इस प्रकार की खंडात्मकता और प्रकरसात्मक परिणति प्रायः सभी रचनाओं में मिलेगी और यह प्रगीत वृत्ति की ही देन है। लंबी रचनाओं में वस्तु विषय दूरगामी एवं आत्मेतर हुआ करता है, अतः उनके संदर्भ में दीर्घ प्रगीत की संज्ञा कुछ अधिक सटीक नहीं लगती, किंतु उन्हें प्रगीतात्मक तो कहा ही जा सकता है। सामाजिक वस्तु विषय वाली लंबी कविताओं में प्रगीत गुण प्रायः नहीं मिलता और शायद इसीलिए वह उतनी प्रतिनिधिक नहीं मानी जाती जितनी कि सांस्कृतिक वर्ग की कविताएं। उनमें कवि की व्यंग्यात्मक प्रतिभा और विनोद प्रिय प्रकृति का स्वच्छंद उच्छलन हुआ है, अतः उनमें स्वभावतः गहराई नहीं है। भाव गांभीर्य की कमी के साथ साथ गेयता, अनविति और परिणति में भी बिखराव मिलेगा। वस्तुतः वह दूसरी ही पद्धति की रचनाएं हैं जिनमें कवि को सतर्कता पूर्वक प्रगीतात्मक वातावरण से अपने को काटते रहना पड़ा है। महाकाव्योचित औदात्त एपिक क्वालिटी की दृष्टि से निराला की तीन कविताएं महत्वपूर्ण हैं, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास। महाकाव्यत्व का आधारभूत वस्तुगत अनुबंध है कथा तत्व और उसके अधिक व्यंग्य की मौलिक अपेक्षा रस सिद्धि है। शेष सारी अपेक्षाएं वर्णनात्मक तथा शिल्पगत हैं और प्रत्यक्षता या परोक्षता इन्हीं मूलभूत आयामों से जुड़ी हुई हैं। निराला की इन रचनाओं में ये आयाम उनके सीमित रचना फलक में भी अपेक्षित विस्तार और विन्यास पा सके हैं। तीनों रचनाओं में क्रमशः वीर, करुण और शांत रसों को प्रधान अभिव्यंग के रूप में रखा गया है और उन्हीं की दृष्टि से कथात्मक विवरणों का चयन किया गया है। ये विवरण एक ओर मुख्य घटना प्रसंग से सीधे जुड़े हुए हैं, दूसरी ओर अन्य सहयोगी रसों तथा भावों की सिद्धि के लिए योग्य भूमिकाएं प्रस्तुत करते हैं। अपने इस चयन कौशल के सहारे कवि राम की शक्ति पूजा में वीरोत्साह के साथ श्रृंगार, करुण, रौद्र, अद्भुत, भयानक और शांत को रसात्मक अथवा भावात्मक प्रतिष्ठा दे सका है। पुष्प वाटिका में सीता के प्रथम दर्शन की स्मृति श्रृंगार का एक निर्मल किंतु मोहक उदाहरण है। सीता की देह दीप्ति, नेत्रों का गोपन संभाषण और मानसिक कृतार्थता की अभिव्यंजना में कवि को विशेष सफलता मिली है। प्राकृतिक वस्तु व्यापार के माध्यम से रत्यात्मक सात्विकों को सांकेतिक करने में निराला अप्रतिम है। कांपते हुए किसलय, झरते पराग समुदय, गाते खग नवजीवन परिचय, मरुमलय वलय, ज्योति प्रपात स्वर्गीय। व्यंजना और शब्द लाघव का वैशिष्ट्य यहाँ अपने प्रकर्ष पर है। मानसिक कृतार्थ के भाव संप्रेषण के लिए सवीय और तुरीय शब्द यहाँ कितने सटीक हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। रसान्विति, जिसे महाकाव्य के आंतरिक विन्यास की प्राथमिक शर्त कह सकते हैं, देखनी हो तो ठीक इसके बाद वीररस के अनुभवों का यह चित्र है। सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा, समस्त हर धनुर्भग और पुनर्वार ज्यों उठा हस्त, फूटी स्मित सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। श्रृंगार सदा से वीर का सहकारी रस रहा है, जिसका कि यह श्रेष्ठतम उदाहरण है। इसी प्रकार पृष्ठ संख्या 132, विक्षोभ आविष्टि, हनुमान के संवेग, ऊर्ध्वागमन में रौद्र, शक्ति के अति प्राकृत कृत्यों में अद्भुत युद्ध चित्रण में भयानक और वानर सेना के पराजय बोध तथा राम की आत्मग्लानि के प्रसंग में निर्वेद प्रधान शांत रसों की स्थिति देखी जा सकती है, जो प्रत्यक्षा प्रत्यक्ष क्रिया प्रतिक्रिया की पद्धति पर वीरोत्साह की सिद्धि से योगवाही बनते हैं। सरोज स्मृति में इसी प्रकार करुण रस को केंद्र में रखते हुए वीर, हास्य, श्रृंगार और शांत के माहौल रचे गए हैं। निराला के आत्म संघर्ष में वीर, वर्ग विशेष के प्रति व्यंग्योक्ति में हास्य, सरोज के सौंदर्य चित्रण में श्रृंगार और कवि के कर्म संन्यास में शांत की रसात्मक अथवा भावात्मक स्थितियाँ विद्यमान हैं और इस सब का सामूहिक प्रभाव करुणात्मक है। भिन्न जाति गुणों वाले रसों को परस्पर सहयोगी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए जैसे व्यापक हृदय एवं अत्यंतिक प्रबंध कौशल की आवश्यकता हो सकती है, वह निराला की सृजनात्मक प्रतिभा का एक सहज लक्षण है। तुलसीदास में उन्होंने इसी प्रकार शांत रस को अंगी बनाकर श्रृंगार तथा वीर को आंगिक रसवत्ता प्रदान की है। इस महाकाव्योचित रसात्मक समग्रता के साथ साथ निराला ने इन रचनाओं के कथा प्रसंगों को खंडात्मक पद्धति पर प्रस्तुत करके उन्हें सर्गाभासी बना दिया है। दृश्यों का वैविध्य भी उनमें कम नहीं। राम की शक्ति पूजा में मध्याह्न से आरंभ करके सूर्योदय तक का एक क्रमिक और गत्यात्मक वातावरण चित्रित किया गया है। आकाश, पर्वत, अंधकार, आलोक, सरोवर, गुल्म तृण, विद्युत आदि के चित्रण या सांकेतिक उल्लेखों द्वारा कवि ने अभीष्ट वैचित्र्य का विधान किया है। तुलसीदास में भी इसी प्रकार बदलते हुए प्रकट चित्रों की श्रृंखला है, किंतु उसमें गत्यात्मकता के स्थान पर खंडात्मक स्थिरता की विशेषता है। सरोज स्मृति में प्रकृति के स्थान पर सामाजिक दृश्य फलक का वैविध्य है। नायकत्व की भी दृष्टि से इन रचनाओं में महाकाव्योचित गरिमा मिलेगी। एक के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम लोक विस्तृत राम है, दूसरी में भारतीय संस्कृति के उन नायक कवि शिरोमणि तुलसीदास को नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है और तीसरी रचना में नायक स्वयं महाप्राण निराला हैं। अस्तु, निराला की इन रचनाओं में महाकाव्य का महाप्राणत्व सुरक्षित है। इस कोट की काव्य प्रतिभा विरले ही साहित्यकार में होती है। हिंदी में तो इसका दूसरा कोई हकदार नजर नहीं आता। अन्य रचनाओं में अभिव्यंग्य और रचनातंत्र अनेक विध है। इनमें एकाधिक कविताएं महाकाव्य के प्राणत्व रसवाद पर आधारित हैं, किंतु उनका वस्तुपरक और शिल्पगत वैलक्षण्य उन्हें दूसरी दिशाओं में ले जाता है, जहां वे प्रायः ही किसी नए सृजनात्मक आयाम का रूपोन्मेष करती हैं। यमुना के प्रति में श्रृंगार की पृष्ठभूमि में करुण रस का परिपाक हुआ है और इसके विश्रृंखल व स्मृत्यात्मक वस्तु सूत्रों के निबद्ध मुक्तक किसी रचना पद्धति पर संग्रथित किया गया है। इस रचना का वैशिष्ट्य यह है कि मुक्तवर्गीय होने पर भी इसमें प्रभाव की एकतानता व संहिति बनी रही है। निबंध मुक्तक के शास्त्रीय रूप में इतने एकतान फैलाव का प्रविधान नहीं। निराला ने इस प्राचीन काव्य रूप को संबोधि गीत की पद्धति से जोड़कर एक प्रकार से उसकी पुनर्रचना की है। संबोधि गीतियों में जैसे प्रेरणाशीलता, वस्तु विषय की सामाजिक अभिमुखता और प्रभाव की उदात्तता अपेक्षित है, वह इस रचना में सर्वतोभावे निहित है। मित्र के प्रति भी संबोधि शैली की रचना है और उसमें भी वह विशेषताएं विद्यमान है, किंतु उसे कवि ने निबंधात्मक पद्धति पर प्रस्तुत किया है। कल्पना के स्थान पर उसमें विचारणा और तर्कणा का आश्रय लिया गया है। कुकुरमुत्ता भी कमोबेश निबंधात्मक ही है और उसमें व्यवस्थित विचारण या भावना के स्थान पर साभिप्राय बिखराव की एकालापी आत्मतर्कणा की पद्धति अपनाई गई है। पृष्ठ संख्या 133। इसके ठीक विपरीत देवी सरस्वती में व्यवस्थित एवं भावनापरक निबंधन की विशिष्टता है। शिवाजी का पत्र की तो शैली ही प्रत्नात्मक है, अतः उसका निबंधात्मक होना सर्वाधिक सहज है। पत्र पद्धति के कारण उसमें स्थल स्थल पर ध्वनित होने वाला उद्बोधनात्मक स्वर उनकी अतिरिक्त विशेषता है। शेष रचनाओं में प्रबंधनात्मक नरेशन की प्रवृत्ति है, पंचवटी प्रसंग को छोड़कर, क्योंकि वह काव्य नाटक के रूप में है। सांस्कृतिक और कल्पना प्रधान कविताओं में यह नरेशन रसवाद से भावित है और सामाजिक वर्ग की रचनाओं में इसका मूल स्वर व्यंग्य विद्रूप का है। कहना न होगा कि निराला की लंबी कविताओं का यह रूपगत वैचित्र्य हिंदी काव्यशास्त्र को वर्गीकरण की दिशा में फिर से विचार करने की प्रेरणा देता है। प्रस्तुतिकरण और रचना शिल्प की दृष्टि से निराला की लंबी कविताओं का कदाचित सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंतरिक गुण उनकी नाटकीयता है। यह निराला की रचनात्मक प्रतिभा का सहजात एवं अविभाज्य गुण है। उनकी काव्यात्मक परिकल्पना में नाट्य तत्व स्वतः निहित रहता है। यह तत्व कवि की वस्तुनिष्ठ दृष्टि और चित्रणात्मक विशेषता से गहरी संबद्धता रखता है। निराला की मूल रचनात्मक प्रकृति प्रस्तुतिकरण की थी। इसे सामान्य काव्य भाषा में बिंबांकन भी कह सकते हैं, किंतु उससे बात बनती नहीं। बिंब के लिए आवश्यक नहीं कि उसमें गत्यात्मकता और वर्तमानता हो ही, जबकि निराला की रचनाओं में इनका होना एक अनिवार्य और सर्वसामान्य लक्षण है। ये विशेषताएं कवि की चित्रणात्मक वृत्ति से जुड़कर उनकी रचनाओं में एक अपूर्व नाटकीयता को जन्म दे सकी हैं। प्रगीतों के वस्तुपरक चित्रण में निराला सीधे अभिनेता की उस मना स्थिति में रहे हैं जिसमें वह अनुकार्य से आत्मैक्य स्थापित कर लेता है। परकाय प्रवेश की इस नाटकीय वस्तु स्थिति को साधारणीकरण भी कहा जा सकता है। लंबी कविताओं में तादात्म्य का यह भाव प्रगीत तत्व या आत्म प्रक्षेपण की स्थितियों में देखा जा सकता है। राम की शक्ति पूजा में राम के माध्यम से कवि का आत्म प्रक्षेपण सर्वाधिक सुंदर बन पड़ा है। निराला के आत्म संघर्ष और उनकी आत्म दृढ़ता की व्यंजना करने में यह रचना आश्चर्यजनक रूप में सक्षम है। राम के आत्म धिक्कार में जैसे अनुकार्य स्वयं मंच पर उपस्थित हो जाता है, तुलसीदास में कवि जनोचित आत्मगौरव के प्रसंग भी ऐसे ही हैं। इसे अभिनय की भाषा में एसाइट की पद्धति कह सकते हैं। आत्म संबोधन या स्वाभिमुखता की यह स्वगत शैली सरोज स्मृति में इस स्थल पर विशेष प्रभावी हो उठी है, जहाँ निराला नरेशन के क्रम में सहसा आत्मग्लानि हो उठते हैं और अपनी करुण आर्द्र कथा का विरल किंतु सशक्त संकेत दे जाते हैं। नाटकों में प्रयुक्त होने वाले पात्रीय स्वगत का रूप पंचवटी प्रसंग में लक्ष्मण और शूर्पणखा की आत्म विचारणाओं में देखा जा सकता है। यह रचना काव्य नाटक के रूप में लिखी गई है। इसकी रचना लोक नाट्य की पद्धति पर की गई है और उसी प्रकार इसे खुले मंच पर प्रस्तुत भी किया गया है। साहित्यिक गीत नाट्य के रूप में देखने पर यह रचना अपने भाव प्रवाह के कारण सदोष लग सकती है और निराला ने इसे वैसा रूप देना भी नहीं चाहा था। इसे वह लोकधर्मी बनाना चाहते थे और कदाचित इसलिए उन्होंने मुक्त छंद को इसका माध्यम बनाया। मुक्त छंद विषयक निराला की अवधारणा कहीं बहुत गहरे इस लोक नाट्य की परंपरा से जुड़ी हुई है। अस्तु, पंचवटी प्रसंग एक श्रेष्ठ काव्य रूपक है और निराला ने इसमें नाट्य तत्व पर बराबर दृष्टि रखी है। पूरी रचना संवाद तथा आत्मकथन में ढली हुई है। इसमें यथावसर क्रिया निर्देश तो गद्य में दिए ही गए हैं, आत्मकथनों में भी क्रियात्मक वर्तमानता की भूमि बनी पृष्ठ संख्या 134 रही है। लक्ष्मण की यह सजगता, चलूं अब चुन लिए प्रसून बड़ी देर हुई, और शूर्पणखा का यह सभ्रम, अरे क्या यह कुटीर है, आया क्या मुनि कोई, बढ़कर जरा देखूं तो। नाटकीय दृष्टि से बड़े जीवंत हैं। शिवाजी का पत्र और कुकुरमुत्ता में एक आलापी नाटकीयता है। इनका एक नाटकीय वैशिष्ट्य यह भी कहा जा सकता है कि इनमें कवि ने भाषा को पात्रानुरूप ढालने का प्रयत्न किया है। जिस प्रकार क्षत्रिय अभिमानी शिवाजी की यह भाषा उनके वीरत्व प्रधान व्यक्तित्व की संवाहक है, दगाबाज लाज हो उतराता है, मर्जाद वालों की खूब बहकाया तुम्हें, उसी प्रकार कुकुरमुत्ते से संबोधित होने वाले जनसाधारण के व्यक्तित्व की बेफिक्री और अभिजात्य विहीन निम्न स्तरीय मानसिक सांस्कृतिक का परिचय उनकी इस शब्दावली में पाया जा सकता है। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, डॉट 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 रोज पड़ता रहा पानी, तू हरामी खानदानी, डॉट 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 सामने ला कर मुझे बेगड़ा, देख कहना तीर से खींचा धनुष मैं राम का, डॉट 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 मैं ही डांडी से लगा पल्ला, सारी दुनिया तौलती गल्ला, मुझसे मूछे मुझसे कल्ला, मेरे लल्लू मेरे लल्ला। निराला की काव्य भाषा में प्राप्त होने वाला यह वैविध्य उनकी नाट्य अनुभूति काव्य दृष्टि का ही प्रतिफलन है। भाषा की इस पात्र अनुरूपता के कारण एक आलाप की नाट्य पद्धति में अत्यधिक असलियत आ गई है। मित्र के प्रति में भी यही रचना पद्धति देखने को मिलेगी। इसमें कवि की नाटकीय आत्मतर्कणा को अभिव्यक्ति मिली है। संवादों की सामान्य नाटकीयता सभी प्रबंधात्मक कविताओं में मिलेगी। पृष्ठ संख्या 135 निराला की प्रवृत्ति प्रस्तुतिकरण की थी, अतः वे वर्णनों में वर्तमानता लाने के लिए उन्हें नाटकीय संवादों में रूपांतरित करते रहे हैं। कई बार तो उन्होंने विशिष्ट नाटकीय युक्तियों का भी उपयोग कर लिया है, जैसे कथोद्घात वर्गीय या संवाद, राम अभी तो रुलाया नहीं, इच्छा यदि है तो तू, लक्ष्मण रो अब जी खोल कर। संबोधि शैली की रचनात्मक प्रेरणा भूमि भी यही प्रस्तुतिकरण की वृत्ति है। यमुना के प्रति में जो चित्रात्मक सजीवता आ सकी है उसका श्रेय इस संवादात्मक परिकल्पना को ही है। यह वृत्ति कवि में इतनी बलवती है कि वर्णनात्मक संदर्भों में भी संबोधनात्मक विशेषता जाने या अनजाने ले आता है। देवी सरस्वती की शैली काव्य वस्तु के अनुरूप वर्णनात्मक, किंतु बीच बीच में कवि सरस्वती को संबोधित करके वर्तमानता का बोध बनाए रखता है। सरोज स्मृति में तो निराला ने एक अप्रासंगिक संबोधन के द्वारा विचित्र नाटकीयता की सृष्टि कर दी है। पुत्री सरोज को वैवाहिक वेशभूषा में देखते हुए वह सहसा अपनी दिवंगत पत्नी को संबोधित कर कह उठते हैं, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास अस्तब्ध बंध अंग अंग। सारूप्य जनित स्मृति और एकीकरण की मानसिक प्रक्रिया से आगे बढ़कर कवि का यह क्षण भर के लिए वर्तमान से कट जाना अपने आप में एक अद्भुत नाटकीयता है। रस आचार्यों को यहाँ भाव विपर्य का दोष दिखाई पड़ सकता है, किंतु उस आधुनिक रचना शिल्प को हम क्या करें जिसमें विपर्य को ही एक अलंकरण मान लिया गया है या बना दिया गया है। राम की शक्ति पूजा में अति प्राकृत तत्व के द्वारा भी नाट्य गुण की सृष्टि की गई है। शक्ति का आकाश को आच्छादित किए रहना, राम के बाणों को उसका आत्मलीन कर लेना और अंजना तथा देवी के रूपों में उसका प्रकट होना मंचीय दृष्टि से प्रभावशाली व रोमांचक दृश्य हैं। गाथा काव्य की इस विशेषता को अपने ढंग से नाटकीय बना देने में निराला को पूरी सफलता मिली है और अपने इस गुण के कारण यह रचना अनेक बार छाया नाटक के आयामों में अभिनीत भी की जा चुकी है। इस अति प्राकृत तत्व से मिलती जुलती छाया प्रतिमा की युक्ति का उपयोग तुलसीदास में वहाँ किया गया है जहाँ तुलसीदास को प्रताड़ना प्रबोधन के अनंतर रत्नावली के माध्यम से अथवा स्वतंत्र मनः सृष्टि के रूप में वाग्देवी की रूपानुभूति होती है। मनः सृष्टि की कुछ ऐसी ही सजीवता यमुना के प्रति में भी है। देवी सरस्वती में यह मनः सृष्टि मानवीकरण की दिशा में संचरित हो गई है और यह मानवीकरण अपनी गात्यात्मकता में नाटकीय हो उठा है। ऋतुओं के रूप में जैसे पट परिवर्तित होते रहते हैं और हर बार काव्य देवी नए रंग रूप नई वेशभूषा में प्रकट होती रहती है। निराला की रचनाओं का यह नाट्य गुण उन्हें अतिरिक्त और विशिष्ट भंगिमा गरिमा प्रदान कर सका है। नाट्य तत्वों का उपयोग प्रसाद ने भी कामायनी में किया है, किंतु निराला की तो मूलभूत काव्य कल्पना ही नाट्य धर्मी है और इसीलिए उनकी रचनाओं में उसके बृहत्तर आयामों की सहज सिद्धि होती रही है। परवर्ती काव्य में इस रचना पद्धति का व्यापक रूप में अनुकरण एवं परिवर्धन किया गया है। रचना प्रक्रिया की दृष्टि से भी निराला की ये लंबी कविताएं कम अनुरंजनकारी तथा नव्य नहीं। पृष्ठ संख्या 136 उन्होंने प्रायः उन सभी काव्य युक्तियों का उपयोग किया है या उनकी रूप कल्पना संकेतित की है, जिन्हें काफी बाद में प्रयोगशील कवियों ने आयातित के लेविल के साथ ग्रहण किया है। प्रसाद ने भी कामायनी में उनमें से एकाधिक का उपयोग किया है। निराला की ये कविताएं सामाजिक वर्ग को छोड़कर कामायनी के प्रकाशन के आसपास कुछ पहले या कुछ बाद में ही लिखी गई हैं। मेरा संकेत केवल यह है कि छायावाद के दो गौरव स्तंभ प्रसाद और निराला रचनात्मक स्तर पर प्रायः एक जैसा अनुभव करते थे, यानी नवीन काव्य वस्तुओं के प्रस्तुतिकरण के लिए दोनों ही नवीन सदियों की तलाश या रचना कर रहे थे। निराला की उपलब्धि बृहत्तर है क्योंकि काव्यगत वस्तु भूमियों में बदलाव आते रहने के कारण उन्हें प्रयोग के अधिक अवसर उपलब्ध हो सके हैं। इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि अपनी प्रयोगात्मक अभिरुचि के कारण उन्होंने महाकाव्य की अपेक्षा स्फुट रचनाओं का प्रस्तुतिकरण श्रेष्ठतर या कि अधिक औचित्यपूर्ण समझा। बावजूद इस तथ्य के कि निराला की मनः स्थिति किस बृहत वस्तु विन्यास को संभालने योग्य नहीं थी, उनकी एकाधिक लंबी कविताओं में महाकाव्योचित आयाम मिलते ही हैं। अस्तु, निराला ने अभिव्यक्ति की नवीन भंगिमाओं और सरणियों को हिंदी काव्य जगत के सामने उद्घाटित किया, कुछ को आत्मसात करके और कुछ का अन्वेषण या निर्माण करके। उनके विषयों में यह सोचना कतई गलत होगा कि वे अपने समसामयिक संसार के प्रमुख काव्य आंदोलनों, वैचारिक गवेषणाओं तथा वैज्ञानिक स्थापनाओं से नितांत असंपृक्त रहे होंगे। कुकुरमुत्ता और नए पत्ते की अनेक रचनाओं का संदर्भ बाहुल्य उनकी जागरूकता और युगीन साझेदारी का परिचय देने के लिए पर्याप्त है। शैली और कथ्य की दिशा में भी उन्होंने बंगला से बहुत कुछ लिया और इसी प्रकार अंग्रेजी से भी, किंतु इसके लिए अनुकरण या आयात की संज्ञाएं उनके संबंध में अच्छी लगती हैं। इसे तो आत्म अनुभावन या आत्मसात करने की प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। निराला में रचनाकार की वास्तविक ग्रहणशीलता थी, इसलिए उनके द्वारा संग्रहित और प्रयुक्त काव्य युक्तियों में अस्पष्टता, उलझाव या अटपटापन नहीं मिलेगा। फिर निराला ने अपनी स्वतंत्र व मौलिक रचनात्मक प्रतिभा का प्रखर परिचय अपनी अनेक विध कृतियों में दिया ही है। रचनात्मकता के जितने वैविध्यपूर्ण और नए स्तर उनकी रचनाओं में मिलते हैं, उतने किसी एक कवि की कृतियों में कम ही मिल पाएंगे। अटूट धारा प्रवाह, वर्णनशीलता से लेकर स्वप्निल फैंटेसी तक और चित्रणात्मक से लेकर मुक्त आसंग फ्री एसोसिएशन की पद्धति तक उनकी रचनाशीलता का परिविस्तार है। छंद और भाषा की दिशा में भी उनकी दृष्टि इतनी ही व्यापक रही है। पुनरावर्तन अथवा पारंपरिकता से उन्हें एलर्जी थी। अपने अनुभव अथवा सहानुभूति की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने अपनी ही सरणियाँ बनाई और उदग्र रचनाशीलता का परिचय दिया। इसी अन्वेषण के परिणाम में हिंदी काव्य को उनसे मुक्त छंद की देन मिली। उनकी अधिसंख्य लंबी कविताएं शिवाजी का पत्र, पंचवटी प्रसंग, जागरण, प्रेयसी, रेखा, कुकुरमुत्ता आदि मुक्त छंद में ही लिखी गई हैं। इन सब में वस्तु विषय के अनुरूप लय और भाषा की प्रकृति बदलती रही है, जिसका परिचय आरंभ में दिया जा चुका है। इसके विपरीत यमुना के प्रति, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, मित्र के प्रति, देवी सरस्वती आदि रचनाओं में कवि ने छंदबद्धता के सौष्ठव का परिचय दिया है। इनमें भी भाषा, लय और छंद के आकार, प्रकार, वस्तु भूमियों के अनुसार बदलते रहे हैं। मध्यवर्ती स्वच्छंद छंद का रूप वन बेला में देखा जा सकता है। मुक्त छंद की कविताओं में उन्होंने प्रवाह विभेद की आंतरिक युक्ति का यथाप्रसंग उपयोग किया है, जिसे उन्होंने रविंद्र की विवादी स्वर पद्धति की परंपरा में अपने ढंग से विकसित कर लिया था। पृष्ठ संख्या 137। संध्या सुंदरी शीर्षक प्रगीत में विवादी स्वर की यह विधि यथावत विद्यमान है। लंबी कविताओं में प्रायः ही यह प्रवाह विभेद के रूप में प्रकट हुई है। कुकुरमुत्ता में मलयांतरण का यह तेवर देखें, आया मौसम खिला फारस का गुलाब, बाग पर उसका पड़ा था रोबोदाब, वही गंदे में उगा देता हुआ बुत्ता, पहाड़ी से उठे सर ऐंठ कर बोला कुकुरमुत्ता, अबे सुन बे गुलाब। ढीठ कुकुरमुत्ते का सहसा उग आना और उससे भी अधिक ढीठपन और उदंडता से भरा हुआ उसका संबोधन, दोनों को ही बदलते हुए तेवरों में रचा गया है। छंदबद्ध रचनाओं में कवि ने अधिकतर यति भंग के शाक की युक्ति अपनाई है, जो अधिकतर प्रसंग सापेक्ष है, किंतु कई बार जिसका लक्ष्य लयात्मक एक रस्ता की ऊब को तोड़ने या भाषिक चमत्कार उत्पन्न करना भी रहा है। राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति में ऐसी लयात्मक संरचनाओं का बाहुल्य है, कहना न होगा कि छंदबद्धता की ऊब को तोड़ने की इस प्रक्रिया में ही स्वच्छंद छंद का उदय हुआ है, और छंद मुक्त की यही साधना मुक्त छंद के रूप में फलवती हुई है। निराला की रचनाओं का यह आकारगत वैचित्र अभिव्यक्ति की आंतरिक विशिष्टताओं के आधार या की अपेक्षित वातावरण प्रस्तुत करता है। राम की शक्ति पूजा की छंदात्मक लय क्षिप्र है और वह युद्धकालीन वातावरण का तज्जन्य मनोद्वंद के आवेग के संवहन संप्रेषण में पूर्णतः सक्षम है। निराला ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ इसमें दिवा स्वप्न की मानसी स्थिति या की रचनात्मक युक्ति का प्रयोग किया है। स्वप्नों में चलचित्र जैसी गत्यात्मक क्षिप्रता होती है और वैसा ही एक त्वरित गति में से बदलता हुआ किंतु सानुक्रम दृश्य फलक पुष्प वाटिका में सीता से प्रथम मिलन की स्मृति के रूप में राम के मानस नेत्रों के सामने क्षण भर के लिए साकार होता हुआ गुजर जाता है। राम की इस मनः स्थिति को स्मरण दशा अथवा पूर्व दीप्ति की प्रक्रिया से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि उनमें क्रमशः अस्थैर्य और पूर्वापर संबंध की अपेक्षा प्रधान होती है, जो कि यहाँ बिल्कुल अप्रासंगिक है। और इसलिए नहीं, पूर्व दीप्ति की पद्धति का रूप सरोज स्मृति में पाया जा सकता है, जिसमें कवि पुत्री के दिवंगत होने का करुण और कथा दृष्टि से अंतिम तथ्य आरंभ में ही पाठक के समक्ष रख देता है और फिर उससे संबद्ध विवरणों को स्मृति के आधार पर संयत ढंग से प्रस्तुत करने लगता है। यमुना के प्रति में भी स्मृत्यात्मक परिवेश है, किंतु कवि के निजी जीवन से संबद्ध ना होने और अत्यंत दूरवर्ती होने के कारण उसमें फैंटेसी का रूप धारण कर लिया है। यमुना को समुचित रूप में ही माध्यम बनाकर निराला ने इसमें कृष्ण से संबंधित अपनी मन सृष्टियों को रूपायित किया है। उनके लिए वह सारा वातावरण मिथक जैसा हो गया है और उन्होंने उसकी प्रतीकात्मक अर्थवत्ता को भी खोलना चाहा है। मिथक तत्व राम की शक्ति पूजा में भी है और वहाँ भी निराला ने उसे जीवन पर एक व्यंजना देने का प्रयास किया है। शक्ति का आकाशव्यापी रूप, अंजना का उदय और राम की हठ यौगिक साधना, क्रमशः पराजय बोध से उत्पन्न द्वंद्व परक दिंग मूढ़ता और औदात्य के आत्मबोध और आत्मविश्वास सहेजने की आंतरिक चेष्टा की व्यंजना करते हैं। यह सब निश्चय ही फंटास्टिक है, किंतु वह पूरे माहौल पर हावी नहीं। विचारणा और विवेक उसे लगातार तोड़ते रहते हैं। परिणामतः इस रचना की अंतिम उपलब्धि व्यंग्य रूप में ही सही मानवीय हो जाती है। पृष्ठ संख्या 138। यमुना के प्रति में यह फंतासीय माहौल बरकरार रहता है और अंत में तो सघनतम हो उठता है, जहाँ कवि की जिज्ञासा नक्षत्र किरण रूपी तारों को मोड़ देकर निस्सीम व्योम वीणा को झंकृत करके अपार गीत गाने वाले देवदूतों की विराट मना सृष्टि में समाहित हो जाती है। स्फटिक शिला और बहुत कुछ कुकुरमुत्ता में मुक्त आसंग की पद्धति अपनाई गई है, जिसमें व्यक्ति के अवचेतन की समूची और सही वास्तविकता निरावरण तथा अनर्गल रूप में प्रकट होती है। वस्तुतः इस पद्धति को मनोरोगों की उपचार प्रक्रिया के रूप में मनाशास्त्रियों ने प्रस्तावित किया था, जिसे काव्य की अति यथार्थवादी धारा ने अभिव्यक्ति के एक सशक्त माध्यम के रूप में अंगीकार कर लिया। निराला की काव्य रचना पूरी तरह से इस पद्धति की इकाई नहीं कही जा सकती, किंतु वह उसके बहुत निकट अवश्य है। कुकुरमुत्ता और स्फटिक शिला के नायक अपनी झोंक में वह सारा कुछ उगलते चले जाते हैं जो उनकी जबान पर आता है और उनके अवचेतन में संचित निहित है। इसे विडम्बना का एक वरदान ही कहेंगे कि कवि की अपनी मनाही स्थिति इस प्रकार की रचना में सहयोग देने वाली रही। निराला के द्वारा निर्दिष्ट इस पद्धति को अनेक प्रगतिवादी कवियों ने आगे चलकर अपनी रचनाओं में प्रयुक्त किया है, किंतु उनमें मनःशास्त्रीय स्थापना का भाषा तथ्य ही अधिक है। यथार्थ की सहजता का आग्रह कम, निराला के यथार्थ में सहजता और मानवीयता की स्थिति बराबर कायम रही है, और यही वह प्रस्थान बिंदु है जहाँ वे यथार्थवादियों या प्रयोगवादियों से अलग व विशिष्ट हो जाते हैं।